हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थी वहां। कुछ की आवाज दबी थी तो कुछ की बातें धृति के कानों में शीशे की कीलें से चुभने लगी थीं। हर जुबान धृति को कटघरे में खड़ा कर रही थी। बिना उसका पक्ष जाने उसे कसूरवार ठहरा दिया गया था। बिना किसी गलती के उसके चरित्र पर कभी न मिटने वाला दाग लग चुका था। धृति खुद पर उठते सवालों और उंगलियों को खामोशी से सह रही थी। शायद अब किसी को कुछ सफाई देना, अपना पक्ष उनके सामने रखना, अपनी बेगुनाही को साबित करना उसके लिए कोई महत्व ही नहीं रखता था। और रखता भी क्यों, जब उसकी खुद की माँ ने उसकी बात नहीं सुनी, बिना सच्चाई जाने उसे गलत ठहरा दिया, बिना किसी गुनाह के उसे सजा सुना दी, तो किसी और को क्या ही कहती वो। सबके लगाए इल्जामों को उसने खामोशी से स्वीकार कर लिया। धृति कुछ पल नम आंखों से उस घर के बंद दरवाजे को देखती रही जहां उसका जन्म हुआ और वो इतनी बड़ी हुई। फिर वो उठकर खड़ी हो गई और अपनी हथेलियों से अपने आंसुओं को पोंछते हुए पलटी तो बाकी लोगों ने नफरत भरी निगाहों से उसे देखते हुए चेहरा फेर लिया। धृति ने अपनी नजरें झुका लीं और उनकी कड़वी बातें सुनते हुए निगाहें झुकाए वहां से चली गई। कार के पास आई तो ड्राइवर बाहर ही खड़ा था। धृति ने अब तक खुद को संभाल लिया था। कमजोर पड़ने की इजाज़त तो उसे कभी से नहीं थी। धृति कार में बैठ गई और ड्राइवर को बुटीक का एड्रेस बता दिया। कुछ आधे घंटे बाद धृति बुटीक पहुंची। उस दिन बिना इन्फॉर्म किए अधूरे में ही यहाँ से चली गई थी और उसके बाद एक के बाद एक इतने हादसे होते चले गए उसके साथ कि उसे अपना ही होश नहीं था, तो यहाँ कब, कैसे और क्या बताती। धृति जानती थी कि उसकी उस दिन की हरकत की वजह से उसको यहाँ भी थोड़ा जलील होना पड़ेगा और उसने खुद को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार भी कर लिया था। वो अंदर जाने लगी तो वहाँ काम करने वाले बाकी लड़के लड़की उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। धृति अपने वर्क प्लेस की तरफ बढ़ ही रही थी कि इतने में वहाँ पियून का काम करने वाले बुजुर्ग अंकल उसके पास चले आए और सर झुकाते हुए बोले, बेटा आपको साहब बुला रहे हैं। धृति जानती थी कि ये तो होना ही था। उसने गहरी सांस छोड़ी और वहाँ के मालिक के केबिन की तरफ बढ़ गई। मे आई कम इन सर, केबिन के गेट पर खड़ी धृति ने जरा सकुचाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सामने कुर्सी पर बैठे आदमी ने अजीब नजरों से उसे देखा, फिर सर हिलाते हुए बोले, यस कम इन। धृति अब अंदर चली आई और उनके टेबल के दूसरे तरफ उनके सामने खड़े होते हुए बोले, सर आपने बुलाया। हाँ, उस आदमी ने हाँ में जवाब दिया और टेबल की दराज से एक लिफाफा निकाला और धृति के सामने टेबल पर लगभग पटकते हुए बोले, ये परसों तक की तुम्हारी सैलरी है, अब से तुम्हें दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे जगह किसी और को रख लिया है। धृति के बॉस के कहे शब्दों को सुनकर धृति की हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रह गई थी। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं और उसने अचंभित निगाहों से उन्हें देखते हुए हैरानी से सवाल किया, सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे काम में कोई कमी रह गई क्या। धृति परेशान घबराई निगाहों से उन्हें देखने लगी। उसके सवाल पर उस आदमी ने बड़ी ही बेरुखी से गुस्से भरे लहजे में जवाब दिया, नहीं काम में कोई कमी नहीं, पर कमी तुम में, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे कैरेक्टर में है। मैंने तुम्हारे टैलेंट को देखकर तुम्हें यहाँ काम पर रखा था, पर तुमने अपने बिहेवियर से मुझे अपने फैसले पर पछताने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी लापरवाही की वजह से हजारों का नुकसान हो गया मुझे। परसों तुम बिना किसी को कुछ बताए अपना काम अधूरा छोड़कर चली गई, ना कोई कॉल ना मैसेज, ऊपर से ऑफिस के कॉल्स को भी पूरी तरह से इग्नोर किया। तुम्हारे वजह से पैसों के नुकसान के साथ हमारे रेगुलर कस्टमर के सामने हमारी बेइज्जती हुई, हमारी गुडविल और मार्केट में इमेज डैमेज हुई। तुम्हारी जैसी गैर जिम्मेदार और लापरवाह लड़की के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, इसलिए इसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। सर ने लिफाफे की तरफ इशारा करते हुए अपनी बात पूरी की। उनकी बातें सुनकर जो पहले से दुखी थी उसकी आंखें भर आईं। उसने खुद को संभालते हुए अपनी बेगुनाही की सफाई देनी चाही, सर मैं लापरवाह नहीं हूँ, मुझे किसी पर्सनल इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ा था। मैं मानती हूँ इस बार मुझसे गलती हुई है, पर सर इससे पहले मैंने कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया था, आगे भी मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगी, बस मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। धृति की बातों का उसके सर पर कोई असर नहीं हुआ था। उन्होंने उसी तरह बेरुखी भरे लहजे में जवाब दिया, तुम्हारी इस गलती की मेरे पास कोई माफी नहीं है, मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे चुका हूँ, इसलिए अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती, तो अब तुम्हारी विनती करने या कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। अभी मैं तुम्हें इज्जत से कह रहा हूँ कि अपनी अब तक की कमाई लो और चली जाओ यहाँ से। अगर सीधे से नहीं मानी तो गार्ड को बुलाकर मुझे मजबूरन तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाना होगा और सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपने पैसे लो और जाकर कहीं और काम ढूंढो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ काम करना तो नामुमकिन है। सर अपना फैसला सुना चुके थे। एक बार फिर अर्नव के वजह से धृति को जलील होना पड़ा था। पहले उसकी खुशियाँ, उसका वजूद उससे छीना गया और अब उसके परिवार के साथ साथ उसका काम, उसका सपना, उसकी जिंदगी का लक्ष्य भी उससे छीन लिया गया था। और आज वो जिस अवस्था में थी उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अर्नव था। धृति के मन में उसके लिए नाराजगी आज और ज्यादा बढ़ गई थी। उसने सर झुकाते हुए वो लिफाफा उठाया और चुपचाप वहाँ से चली गई। उसके केबिन से बाहर निकलते हुए उस आदमी ने गहरी सांस छोड़ी और किसी को फोन लगा दिया। पहली रिंग में ही दूसरे तरफ से कॉल रिसीव हो गया। काम हो गया। दूसरे तरफ से एक रौबदार आवाज आई जिसे सुनकर धृति के सर ने घबराकर हाँ में जवाब दिया। यस सर, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। धृति को बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया है। अब तो आप मेरे बुटीक को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे ना? नहीं, अब तुम और तुम्हारा बुटीक पूरी तरह से सेफ है। बस याद रहे कि धृति दोबारा वहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। जी सर। उनके हाँ में जवाब देते ही फोन कट गया। फोन के दूसरे तरफ मौजूद अर्नव, जिसने ये सब प्लान किया था, वो किसी महाराजा जैसे अपनी चेयर पर अकड़ते हुए पसर कर बैठ गया। उसके लबों पर विजय कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। उसने अपना सर चेयर से टिकाया और शैतानी मुस्कान लबों पर सजाते हुए खुद से ही बोला, अभी तो ये तुम्हारी बर्बादी की सिर्फ शुरुआत है मिस धृति अवस्थी। तुम तो बस देखती जाओ कि आगे आगे क्या होता है और कैसे मैं तुम्हारा जीना दुश्वार करता हूँ। अर्नव धृति के उदास मायूस चेहरे को याद करते हुए शैतानी हंसी हंसने लगा। दूसरी तरफ धृति एकदम उदास और मायूस वहीं पास के पार्क में बैठ गई अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। जैसे भी चल रही थी, पर कुछ दिनों पहले तक तो उसकी जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी और वो खुश थी उस जिंदगी से। पर जब से अर्नव नाम का तूफान उसकी जिंदगी में आया है, उसकी पूरी जिंदगी बिखर गई है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। जाने कब ये तूफान थमेगा और कब उसकी जिंदगी पटरी पर आएगी। जाने कब इस सजा का अंत होगा जिसके पीछे छुपी अपनी गलती तक नहीं जानती थी वो। देखते देखते शाम हो गई, पर धृति वहाँ से इंच भर भी नहीं हिली। ड्राइवर कई बार आकर उसे बुला चुका था, पर धृति जाना ही नहीं चाहती थी। रात के करीन 8 बज चुके थे। धृति अब भी वहीं उस पार्क में बैठकर शून्य में ताक रही थी। रात हो चुकी थी तो पार्क एकदम खाली हो चुका था, फिर भी धृति अकेले वहाँ बैठी हुई थी। ड्राइवर एक बार फिर धृति को बुलाने आया, पर उसने जाने से इनकार कर दिया। ड्राइवर ने अब सीधे अर्नव को फोन लगाकर सब बता दिया। धृति अपने ख्यालों में गुम, उदास, मायूस, हताश सी वहाँ बैठी थी, जैसे अब उसके लिए सब खत्म हो गया हो और वो बस इस जिंदगी के बोझ से आज़ादी चाहती हो।
अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे कि कुछ आवारा लड़के वहाँ आ गए। उनमें से सभी ने शराब पी हुई थी। सुनसान पार्क में अकेली किसी लड़की को देखकर सब आपस में कुछ कुसुर फुसुर करने लगे। फिर लबों पर जहरीली मुस्कान और आंखों में हवस भरकर धृति की तरफ बढ़ने लगे। आगे वाले खतरे से अनजान धृति खामोश सी वहां बैठी थी। तभी अचानक उसे अपनी हथेली पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ, जैसे कोई उसे सहला रहा हो। धृति चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने चौंकते हुए निगाहें घुमाई तो उसके बगल में बैठा लड़का उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कराने लगा, जिससे उसके गुटके से लाल काले दांत नजर आने लगे और साथ ही उसकी नशे की वजह से आंखें भी लाल थीं, जिन्हें देखकर धृति डर गई और तुरंत उसका हाथ झटकते हुए वो उठकर खड़ी हो गई। क्या हुआ छमिया, आ बैठ साथ में, रात का मजा लेते हैं। उसकी बात और बोलने के तरीके से धृति को खतरे का अंदेशा हो गया था। उस पर जब उसने खुद को नशे में धुत आवारा लड़कों से घिरा देखा और भय से उसका हलक सूखने लगा, वो समझ गई कि यहाँ एक पल भी रुकना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है और अकेले इतने लड़कों का सामना करना बेवकूफ़ी होगी। सब संभावनाओं के बारे में सोचने के बाद उसने भागकर खुद को इन आवारा मनचले लड़कों के हवस का शिकार बनने से बचाना ही उसको सबसे सही उपाय लगा। इसलिए उसने बिना एक पल गंवाए तुरंत बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। वो लड़के जो अब तक उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे कि चांदनी रात को रंगीन बनाने के लिए उन्हें एक चांद सी खूबसूरत जवान हसीना मिल गई है, उनके चेहरे के भाव एकदम से सख्त हो गए और उन्होंने भी धृति के पीछे दौड़ लगा दी। आखिर उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे वे। ए छमिया, कहाँ भागी चली जा रही है? इधर आ हमारे पास, तेरी तन्हाई दूर कर देंगे हम। ए रमन, पकड़ साली को, हाथ से निकलकर न जाने पाए। आज तो शराब के साथ शबाब का भी आनंद लेंगे। लड़की है तो बहुत खूबसूरत, अगर मिल गई तो आज तो मज़ा ही आ जाएगा। ऐसे ही आपस में बात करते हुए धृति को रुकने को कहने के लिए वे उसके पीछे भाग रहे थे। भागते हुए धृति की सैंडल टूट गई, जिसे पीछे छोड़ते हुए वो बिना रुके बस आगे की तरफ भागती चली गई। उनमें से एक लड़का धृति के करीब पहुंच गया। धृति तो उससे बच गई, पर उसका दुपट्टा उस लड़के के हाथ लग गया। पर धृति तब भी नहीं रुकी और पूरा दम लगाकर भागती गई। वे लड़के उसे घेरने में लगे थे ताकि वो पार्क से बाहर न जा सके, और धृति उनसे बचते हुए भाग रही थी। कंकड़ पत्थर चुभने की वजह से उसके पैरों से खून निकलने लगा था, दर्द भी हो रहा था, पर धृति ने अपने कदमों को रुकने की इजाज़त नहीं दी। आज उसे किसी भी तरह से खुद को इन हैवानों से बचाना था। भागते भागते अचानक ही धृति का पैर मुड़ गया और वो औंधे मुँह आगे को गिरने लगी। पर इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने उसकी बाँह पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। धृति गिरने के जगह उस शख्स के चौड़े मजबूत सीने से टकरा गई। भागने के वजह से उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उस शख्स ने उसकी कमर पर अपनी बाहों के घेरे को कस दिया, जिससे धृति उसकी बाहों में छटपटाने लगी और उस शख्स को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए चिल्लाने लगी। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, वरना मैं सब कुछ जान से मार दूंगी।